नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है एकत्र ज्ञान गोष्ठी में।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जिसने कह सकते हैं कि 1960s के दशक में अमेरिका की अपनी खुशहाली की जो छवि थी उसे बुरी तरह हिला कर रख दिया था।
हाँ बिल्कुल, एक ऐसा दौर था वो जब अमेरिका अपनी आर्थिक ताकत, अपनी समृद्धि उसके चरम पर महसूस कर रहा था, है ना?
हाँ, और तभी ये किताब एक आईना दिखाती है जिसमें एक बिल्कुल अलग, मतलब एक अनदेखी तस्वीर नजर आई।
जी, हम बात कर रहे हैं माइकल हैरिंगटन की किताब दी अदर अमेरिका की।
दी अदर अमेरिका,
बिल्कुल। ये किताब छपी तो 1962 में थी, लेकिन इसकी गूंज आप देखें तो आज तक सुनाई देती है।
सही बात है।
और ये सिर्फ अमेरिका के बारे में ही नहीं बल्कि ये किसी भी ऐसे समाज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो अपनी तरक्की के दावों के बीच अपने ही लोगों के एक बड़े हिस्से की मुश्किलों को जैसे अनदेखा कर देता है।
हाँ, अनदेखा कर देता है।
हैरिंगटन ने हमें ये समझने में मदद की कि कनीदी सिर्फ जेब खाली होने का नाम नहीं है, ये एक पूरा ढांचा है, एक सिस्टम है जो लोगों को अदृश्य बना देता है।
अदृश्य।
हाँ,
तो आज हम इसी किताब के असर और इसके पीछे का जो इरादा था, मतलब जो लक्ष्य था, उसे समझने की कोशिश करेंगे।
जी बिल्कुल।
तो सवाल यही उठता है कि भाई कैसे एक किताब ने उस दौर के सबसे अमीर मुल्क की सोच पर इतना गहरा असर डाल दिया, और आज इतने सालों बाद भी हम इससे क्या सीख सकते हैं, ये जानना दिलचस्प होगा।
हाँ जरूर। तो शुरुआत करते हैं लेखक से।
जी,
माइकल हैरिंगटन 1928 में जन्मे, 1989 तक रहे।
अच्छा।
और वो कोई सिर्फ किताबी कीड़े या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं थे।
हाँ, ये जानना जरूरी
हाँ,
है।
वो राजनीति विज्ञानी तो थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक लेखक थे, और वो खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते थे।
डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझाएंगे?
इसका मतलब है कि वो मानते थे कि गरीबी जैसी जो बड़ी सामाजिक समस्याएं हैं उनका हल सिर्फ ऊपरी लीपापोती से नहीं होगा।
अच्छा।
बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था का जो बुनियादी ढांचा है उसमें लोकतांत्रिक तरीकों से बदलाव लाकर ही हो सकता है।
व्यवस्था को बदलना जरूरी है,
ये
ऐसा वो मानते थे। ठीक है, यानी जड़ से बदलाव की बात।
बिल्कुल। और उनकी सबसे बड़ी ताकत शायद ये थी कि उन्होंने गरीबी को सिर्फ आंकड़ों या सिद्धांतों में नहीं पढ़ा था। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के बोहरी जैसे जो गरीब इलाके हैं,
हाँ सुना है उसके बारे में,
वहां कैथोलिक वर्कर मूवमेंट के साथ सालों तक काम किया था। वो सचमुच गरीबों के बीच रहे, उनकी जिंदगी को बहुत करीब से देखा, महसूस किया।
अच्छा, तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था।
बिल्कुल, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। और ये जमीनी अनुभव उनकी लेखनी में साफ झलकता है। वो आंकड़ों के साथ इंसानी कहानियों को जिस तरह पिरोते हैं वो उनकी बात को बहुत शक्तिशाली बना देता है।
दृष्टि दी जिससे वो उस गरीबी को देख पाए जिसे बाकी अमेरिका या तो देखना ही नहीं चाहता था
या देख ही नहीं पा रहा था।
या देख ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल। उनका इरादा सिर्फ समस्या बताना नहीं था।
अच्छा।
बल्कि उस जमीनी हकीकत और जो सामाजिक सिद्धांत हैं उनके बीच एक पुल बनाना था। ये दिखाना था कि देखो, ये जो दिक्कतें हैं ये किसी की व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था की उपज है।
ओके।
तो ये उनकी भूमिका थी एक तरह से, सिद्धांत और जमीन को जोड़ने की।
बिल्कुल।
तो अब आते हैं किताब पर। दी अदर अमेरिका है क्या असल में?
देखिए, इसे आप एक तरह का खुलासा कह सकते हैं, एक एक्सपोजे।
एक्सपोजे,
हाँ, एक झकझोरने वाली रिपोर्ट और साथ ही बदलाव के लिए एक पुकार भी, एक कॉल टू एक्शन।
अच्छा, कॉल टू एक्शन भी।
जी, ये सीधे सीधे उस अमेरिकी मध्य वर्ग से बात कर रही थी जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की जो आर्थिक तरक्की थी, जो बूम था, उसमें जी रहा था और मान बैठा था कि भाई अमेरिका ने तो गरीबी को लगभग हरा दिया है, सब ठीक है,
मतलब सब चंगा सी।
बिल्कुल। और तभी हैरिंगटन आते हैं और ये चौंकाने वाला दावा करते हैं कि इस चमक दमक के पीछे अमेरिका में 4 से 5 करोड़ लोग।
4 से 5 करोड़।
हाँ, सोचिए, उस वक्त देश की लगभग चौथाई आबादी,
आप रे,
1/4,
हाँ,
वो भयंकर गरीबी में जी रही थी। ये वो लोग थे जिन तक तरक्की की रोशनी पहुंची ही नहीं थी। ये वो दूसरा अमेरिका था जो पहले वाले अमेरिका की नजरों से पूरी तरह ओझल था, गायब था।
तो ये किताब हमें उन अनदेखे कोनों में ले जाती है फिर।
बिल्कुल। अपलाचिया के पिछड़े पहाड़ी इलाकों से लेकर बड़े शहरों की घनी बदहाल बस्तियों तक, हम मिलते हैं उन प्रवासी मजदूरों से जिनका कोई ठिकाना नहीं, जो खेतों में खटते हैं, उन बूढ़े लोगों से जो अपनी छोटी सी पेंशन या सोशल सिक्योरिटी पर गुजारा नहीं कर पाते, उन लोगों से जिनके हुनर अब नई अर्थव्यवस्था में मतलब बेकार हो गए।
अच्छा।
और हैरिंगटन का मुख्य तर्क यही था कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये एक दुष्चक्र है जिसमें निराशा है, खराब सेहत है, अच्छी शिक्षा और अवसरों की कमी है, और अपनी बात कहने की जो राजनीतिक ताकत होती है उसका ना होना, ये सब शामिल हैं।
मतलब ये सब जुड़ा हुआ है आपस में।
बिल्कुल, वो गरीबी की परिभाषा को ही बदलना चाहते थे। उनका लक्ष्य था कि इसे इंसान के चरित्र की कमी बताने की बजाय इसे समाज के ढांचे की नाकामी के तौर पर पेश किया जाए।
ओके, तो ये किताब का एक बड़ा मकसद या कहें लक्ष्य था।
जी हाँ, बिल्कुल।
चलिए अब जरा उन मुख्य विचारों पर गौर करते हैं जो हैरिंगटन ने इस किताब में सामने रखे। पहला और शायद सबसे जरूरी, आपने कहा गरीबी की अदृश्यता।
द इनविजिबल लैंड पहला अध्याय ही यही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक नई गरीबी है जो दिखती नहीं है।
दिखती नहीं है, लेकिन क्यों? मतलब इतने सारे लोग दिखते क्यों नहीं?
इसके कई कारण उन्होंने गिनाए। एक तो भौगोलिक दूरी।
अच्छा।
गरीब लोग अक्सर शहरों के उन हिस्सों में या दूर दराज के गांवों में रहते हैं जहां अमीर और मध्यम वर्ग के लोग मतलब जाते ही नहीं। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड।
हाँ, ये तो होता है।
दूसरा, राजनीतिक रूप से ये लोग बिखरे हुए हैं। उनकी कोई ताकतवर आवाज नहीं है, कोई लॉबी नहीं है जो उनके लिए बात करे। तीसरा, हैरिंगटन ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि सस्ते मास प्रोड्यूस्ड कपड़ों की वजह से
अच्छा हाँ
ऊपरी तौर पर गरीबी छिप जाती है।
बिल्कुल सही बात है।
मतलब फटे पुराने कपड़ों में नहीं दिखते शायद लोग।
सही बात है।
और चौथा, जब हम औसत आमदनी के आंकड़े देखते हैं, जैसे देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई,
हाँ हाँ,
तो वो आंकड़े देश के अंदर की भारी असमानता को छिपा देते हैं। वो औसत होते हैं, हकीकत नहीं दिखाते।
सही कहा। तो इसका नतीजा क्या हुआ, मतलब इस अदृश्यता का?
नतीजा सीधा सा है, जो समस्या दिखती नहीं उसका हल कैसे निकलेगा।
हाँ,
इसीलिए हैरिंगटन के लिए पहला कदम, उनका पहला लक्ष्य यही था कि इस अदृश्यता के पर्दे को हटाया जाए, इस दूसरे अमेरिका को सबके सामने लाया जाए, ये दिखाना कि हाँ ये समस्या मौजूद है और ये बहुत बड़ी है।
अगर हम भारत में सोचें तो ये कितना सच लगता है। जैसे बड़े शहरों में गगनचुंबी इमारतों के ठीक पीछे झुग्गियां होती हैं, पर ध्यान नहीं जाता।
बिल्कुल। या फिर ग्रामीण संकट की खबरें अक्सर शहरी मीडिया में उतनी जगह नहीं पाती। ये अदृश्यता हर जगह है, किसी न किसी रूप में।
सही बात है। तो इस अदृश्यता को दिखाने के बाद हैरिंगटन आगे क्या कहते हैं, ये लोग हैं कौन?
हाँ, फिर वो इस सवाल पर आते हैं कि आखिर ये दूसरे अमेरिका के लोग हैं कौन। वो उन्हें रिजेक्ट्स कहते हैं।
रिजेक्ट्स मतलब?
मतलब वो लोग जिन्हें तरक्की की दौड़ में पीछे छोड़ दिया गया है, जिन्हें सिस्टम ने एक तरह से नकार दिया है।
ओहो।
यहीं पे वो नई गरीबी की अवधारणा लाते हैं। ये वो लोग हैं जो अर्थव्यवस्था में आ रहे बदलावों, जैसे ऑटोमेशन है या उद्योगों का बंद होना है।
हाँ, जैसे मिलें बंद हो गईं।
बिल्कुल, उसके शिकार हुए हैं। जिनके पास जो हुनर था, अब उसकी बाजार में कोई कदर नहीं रही।
अच्छा, तो ये नई गरीबी थी।
जी, जैसे कि वो फैक्ट्री मजदूर जिनकी नौकरी मशीन ने ले ली, या वो किसान जिनकी जमीन अब उतनी उपजाऊ नहीं रही, या उपज का सही दाम नहीं मिल रहा, या फिर वो बुजुर्ग जो बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य के खर्चों के बोझ तले दबे हैं, या शहरी विकास के नाम पर अपनी जगहों से उजाड़ दिए गए लोग।
हाँ, ये सब तो आज भी दिखता है।
बिल्कुल, ये सब उस नए गरीब वर्ग का हिस्सा थे जिसे हैरिंगटन दिखा रहे थे। और ये दिखाना कि ये लोग आलसी नहीं हैं बल्कि बदलते वक्त के शिकार हैं, ये किताब का एक बहुत अहम काम था, एक अहम भूमिका थी।
समझ गए। फिर एक और विचार आपने बताया था, गरीबी की संस्कृति। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लगता है।
हाँ, ये थोड़ा विवादास्पद है और इसे ध्यान से समझना जरूरी है। हैरिंगटन कहते हैं कि लगातार गरीबी में रहने से लोगों के अंदर एक तरह की निराशा, लाचारी और भविष्य के प्रति उदासीनता घर कर जाती है।
मतलब होपलेसनेस।
हाँ, होपलेसनेस। वो आगे की लंबी प्लानिंग करने के बजाय सिर्फ आज में जीने लगते हैं, आज की जरूरतें पूरी करने पर ध्यान देते हैं।
लेकिन क्या वो ये कह रहे थे कि यही संस्कृति गरीबी का कारण है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सबसे जरूरी बात है। वो ये नहीं कह रहे थे कि ये संस्कृति गरीबी का कारण है।
अच्छा।
बल्कि वो कह रहे थे कि ये गरीबी में जीने की जो मुश्किल परिस्थितियां हैं उनका नतीजा है, उनसे जूझने का, उनको सहने का एक तरीका है, एक एडाप्टेशन है।
ओके, नतीजा है, कारण नहीं।
बिल्कुल। लेकिन दिक्कत यह है कि ये मानसिकता फिर खुद एक जाल बन जाती है, एक ऐसा दुष्चक्र जिसे बाहर निकलना पीढ़ी दर पीढ़ी मुश्किल होता जाता है।
ये समझ आता है। भारत में भी हम अक्सर देखते हैं कि कैसे सालों की वंचना के बाद कुछ समुदायों में आगे बढ़ने की उम्मीदें थोड़ी कमजोर पड़ जाती हैं।
सही कहा।
इसके बाद हैरिंगटन क्या अलग अलग समूहों की बात करते हैं?
हाँ, इसके बाद वो गरीबी के अलग अलग चेहरों को और ज्यादा बारीकी से दिखाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे नस्ल और भूगोल यानी आप किस नस्ल के हैं और कहाँ रहते हैं, ये गरीबी के अनुभव को और बदतर बना सकते हैं।
अच्छा,
अमेरिका के संदर्भ में वो अफ्रीकी अमेरिकनों की बात करते हैं जिन्हें गरीबी के साथ साथ नस्लीय भेदभाव का दोहरा बोझ उठाना पड़ता है।
दोहरा बोझ?
हाँ, अलगाव, अवसरों की कमी, हर मोड़ पर रुकावटें, ये उनकी गरीबी को और भी ज्यादा जटिल और क्रूर बना देती हैं। हैरिंगटन कहते हैं ये खास अलग तरह की गरीबी है।
और भूगोल का क्या असर?
इसी तरह वो ग्रामीण गरीबी की बात करते हैं, खास तौर पर अपलाचिया जैसे इलाकों की। ये इलाके कोयला खदानों पर बहुत निर्भर थे।
हाँ।
जब खदानें बंद हुईं या काम कम हुआ तो पूरे के पूरे समुदाय गरीबी और बेरोजगारी में धस गए।
ओहो।
वहां अच्छे स्कूल नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, बाकी देश से एक तरह से कटे हुए महसूस करते हैं लोग। ये दिखाता है कि आप कहाँ पैदा होते हैं और रहते हैं, इसका आपकी किस्मत पर कितना गहरा असर पड़ता है।
ये तो भारत में भी हम देखते हैं, कुछ इलाके, कुछ राज्य विकास की दौड़ में कितने पीछे छूट गए।
बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, वो बुजुर्गों की गरीबी की बात करते हैं, विकलांगों की, प्रवासी खेतीयर मजदूरों की जिनका लगभग सामंती शोषण होता है।
हाँ।
मूल अमेरिकियों यानी नेटिव अमेरिकन्स की, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे लोगों की, इन सब समूहों की बात करते हैं।
अच्छा, काफी विस्तार से बताया।
हाँ, वो दिखाते हैं कि कैसे समाज अक्सर इन लोगों को उनकी हालत के लिए दोषी ठहरा देता है, जबकि असल में वो अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और देखभाल व्यवस्था के शिकार होते हैं। इन सभी उदाहरणों से हैरिंगटन का मकसद ये साबित करना था कि देखो, गरीबी कोई एक जैसी समस्या नहीं है, लेकिन इसके जड़ में अक्सर व्यवस्थागत कारण ही होते हैं, ये व्यक्तिगत विफलता नहीं है।
समझ गई। तो इन सब विश्लेषणों के बाद हैरिंगटन किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्या कहते हैं आखिर में?
वो एक बहुत गंभीर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका असल में दो राष्ट्रों में बट गया है।
दो राष्ट्र?
हाँ, एक अमीर और खुशहाल, दूसरा गरीब और निराश। और इन दोनों के बीच की जो दीवार है वो लगातार ऊंची होती जा रही है, खाई चौड़ी होती जा रही है।
ओहो।
और वो कहते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अपने आप नहीं हो रहा, ये जानबूझकर बनाई गई नीतियों और नजरअंदाजी का नतीजा है, ये संरचनात्मक है।
तो फिर समाधान क्या है अगर ये संरचनात्मक है तो?
इसीलिए वो समाधान भी व्यक्तिगत नहीं बल्कि व्यवस्थागत सुझाते हैं। वो सरकार से गरीबी के खिलाफ एक धर्म युद्ध छेड़ने का आह्वान करते हैं, क्रूसेड अगेंस्ट पॉवर्टी।
धर्म युद्ध? इतना बड़ा शब्द?
हाँ, क्योंकि वो मानते थे कि समस्या इतनी बड़ी और गहरी है कि उससे लड़ने के लिए उतनी ही बड़ी इच्छा शक्ति और संसाधन चाहिए। उनका मानना था कि सिर्फ सरकार ही इतने बड़े पैमाने पर दखल दे सकती है।
किस तरह का दखल?
शिक्षा में भारी निवेश, सबके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा, सस्ते और अच्छे आवास का इंतजाम, रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रम, इन सब में बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश।
अच्छा।
वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये देश की आर्थिक भलाई के लिए भी जरूरी है। एक स्वस्थ, शिक्षित और उत्पादक आबादी ही देश को आगे ले जा सकती है। हैरिंगटन के लिए ये अमेरिका की आत्मा को बचाने की लड़ाई थी। और इस लड़ाई को शुरू करवाना, नीति निर्माताओं को जगाना, उनको एक्शन लेने पर मजबूर करना, यही उनकी किताब का सबसे बड़ा लक्ष्य था।
तो ये थी किताब की भूमिका और लक्ष्य, अदृश्य को दिखाना और फिर एक्शन के लिए प्रेरित करना।
बिल्कुल।
वाकई इस किताब से कई गहरे संदेश मिलते हैं। अगर हम मुख्य बातों को समेटें तो पहला तो यही हुआ, गरीबी की अदृश्यता को पहचानना।
हाँ, उसे सक्रिय रूप से देखने की जरूरत।
हाँ, ये मानना कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी तकलीफें हमें दिखती नहीं, और उन्हें देखने और समझने की कोशिश करना।
दूसरा, गरीबी के लिए व्यक्ति को दोष देने के बजाय व्यवस्था की खामियों को समझना। अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, भेदभाव कैसे होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य तक सबकी पहुंच क्यों नहीं है, इन सवालों पर सोचना।
हाँ, क्योंकि समाधान भी फिर वहीं से निकलेगा।
तीसरा, वो गरीबी की संस्कृति वाली बात, ये समझना कि निराशा और लाचारी अक्सर मुश्किल हालात की देन होती है,
ना कि लोगों की फितरत।
बिल्कुल। और ये कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकती है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
चौथा, ये मानना कि कुछ समूहों के लिए गरीबी का अनुभव ज्यादा कठोर होता है, चाहे वो नस्ल या जाति के आधार पर हो या फिर भौगोलिक स्थिति के कारण। मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच नहीं चलेगा,
लेकिन इसके लिए सामूहिक इच्छा शक्ति चाहिए और खासकर सरकार के तरफ से बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जरूरत है। ये सिर्फ दान पुण्य या चैरिटी का मामला नहीं है बल्कि नीतिगत बदलावों का मामला है। हैरिंगटन ने यही बहस अमेरिका में छेड़ी थी।
इस किताब में कुछ यादगार पंक्तियां या विचार भी हैं?
हाँ, कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। एक जो मुझे हमेशा याद रहती है वो ये कि हैरिंगटन कहते हैं, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये शरीर और आत्मा दोनों को जख्मी करती है।
शरीर और आत्मा दोनों को? गहरा है ये तो।
हाँ, ये इंसान को उसकी बुनियादी गरिमा से वंचित कर देती है। और वो पूछते हैं, क्या हम इसे स्वीकार कर सकते हैं?
एक और विचार जो आपने पहले भी बताया था, वो राजनैतिक अदृश्यता वाला।
हाँ, कि गरीब लोग राजनीतिक रूप से अदृश्य होते हैं। उनकी कोई आवाज नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई लॉबी नहीं, इसलिए नेता अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी जरूरतें चुनावी मुद्दा नहीं बन पाती।
ये तो आज भी कितना सच लगता है ना?
बिल्कुल। और वो गरीबी की संस्कृति वाली बात पर लौटें तो ये सोचना कि लगातार हार और निराशा झेलते हुए उम्मीद बनाए रखना कितना मुश्किल होता होगा। वो लाचारी कोई व्यक्तिगत कमी नहीं, बल्कि हालात से उपजी एक प्रतिक्रिया है।
और वो सबसे तीखी बात जो आपने कही थी,
हाँ, कि अक्सर गरीब होने का कारण सिर्फ ये होता है कि आप गलत जगह, गलत परिवार, गलत समुदाय या गलत समय में पैदा हुए हैं।
ओहो।
ये उस सोच पर सीधा हमला है कि हर कोई सिर्फ अपनी मेहनत और काबिलियत से आगे बढ़ता है, जिसे मेरिटोक्रेसी कहते हैं। हैरिंगटन दिखाते हैं कि भाई शुरुआत की दौड़ में ही सब बराबर नहीं होते।
ये तो बहुत सोचने वाली बात है।
तो अब सवाल ये है कि आज हम जो सुन रहे हैं वो इस किताब से क्या ले सकते हैं, इसे अपने जीवन में कैसे देख सकते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो शायद नजरिया बदलने की है।
नजरिया बदलना कैसे?
जब हम किसी गरीब या मुश्किल में फंसे इंसान को देखें तो उसे तुरंत जज करने या दोष देने के बजाय एक पल रुककर उन सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के बारे में सोचने की कोशिश करें जिनका वो शायद सामना कर रहा होगा। थोड़ी सहानुभूति, थोड़ी समझ।
ये तो कर सकते हैं। और दूसरा?
दूसरा, हम अपने समाज और राजनीति में ज्यादा जागरूक हो सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन सी नीतियां गरीबी कम करने में मदद कर रही हैं और कौन सी नहीं।
जैसे?
जैसे क्या न्यूनतम मजदूरी इतनी है कि गुजारा हो सके? क्या सबके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सच में उपलब्ध है? सिर्फ व्यक्तिगत मदद जैसे दान देना, उससे आगे बढ़कर उन नीतियों की वकालत करना जो समस्या की जड़ पर चोट करती हों।
सही बात है, सिस्टम को बदलने की बात।
बिल्कुल। तीसरा, क्या हम आज के अदृश्य गरीबों को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं?
आज के अदृश्य गरीब कौन हो सकते हैं? वो
हो सकता है वो ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले लड़के हों जिनका कोई तय वेतन या छुट्टी नहीं, या वो छोटे किसान हों जो कर्ज में डूबे हैं, या हमारे ही शहरों में किराए के छोटे छोटे कमरों में रहने वाले परिवार हों जो महीने का खर्च मुश्किल से चला पाते हैं। औसत आंकड़ों के शोर में अक्सर ये कहानियां खो जाती हैं। उन्हें सुनने समझने की जरूरत है।
और चौथा
और आखिर में, अगर हम किसी ऐसे पेशे में हैं जिसका समाज पर सीधा असर पड़ता है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, सोशल वर्कर या पॉलिसी मेकर, तो ये किताब हमें याद दिलाती है कि लोगों की समस्याओं को टुकड़ों में नहीं देखना है, बल्कि उनकी पूरी सामाजिक आर्थिक हकीकत के संदर्भ में देखना कितना जरूरी है। जैसे बच्चे का स्कूल में ध्यान ना लगना शायद घर पे खाने की कमी से जुड़ा हो सकता है। या किसी बीमारी का बार बार लौटना शायद रहने की खराब परिस्थितियों से जुड़ा हो सकता है। होलिस्टिक अप्रोच।
बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से अगर एक मुख्य सीख लेनी हो तो वो क्या होगी आपके लिए?
मेरे लिए शायद ये है कि संपन्न समाजों में भी गरीबी का टिके रहना अक्सर एक तरह का राजनीतिक चुनाव होता है, एक सामाजिक अनदेखी का नतीजा होता है। ये कोई कुदरती आफत नहीं है जिसे टाला नहीं जा सकता, और इसके शिकार लोग अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार नहीं है।
और मेरे लिए सबसे प्रभावशाली बात यह है कि कैसे शब्दों में, विचारों में इतनी ताकत हो सकती है। मतलब कैसे एक किताब ने एक पूरे देश को आईना दिखाया, एक बड़ी बहस छेड़ दी, और यहाँ तक के वॉर ऑन पॉवर्टी जैसी सरकारी नीतियों को प्रेरित किया।
हाँ, ये सच है।
ये दिखाता है कि सच को सामने लाने का, अदृश्य को दृश्य बनाने का कितना गहरा असर हो सकता है। ये किताब सिर्फ एक विश्लेषण नहीं थी, ये बदलाव लाने का एक जरिया बनी। इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।
बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या आज हमारे समाज में, हमारे चारों ओर ऐसी ही कोई अदृश्य सच्चाई है जिसे हम देखने से कतरा रहे हैं? और अगर है तो उसे सामने लाने की, उसकी आवाज बनने की जिम्मेदारी किसकी है? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।